सुन तप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मनुष्यों और पशुओं में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मनुष्यों को अपने माँ बाप से उत्तराधिकार के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता है, पशुओं को नहीं प्राप्त होता है। उन्हें हर चीज जो भी उन्हें प्राप्त करना है, जो भी उन्हें सीखना है, सब स्वयं से ही करना होगा। माँ बाप से उन्हें एक पूरा घास का भी प्राप्त नहीं होता है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप करोड़पतियों के बीच में रहते हैं, इसलिए आपको एक कहना अच्छा लगता है कि मनुष्यों को अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं मिलता है। बम्बई में तो आप देखते हैं फुटबाथ से पड़े रहते हैं, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यदि उन्हें माँ बाप से कोई संपत्ति नहीं मिली होगी, रुपया पैसा नहीं मिला होगा, तो कर्जा मिला होगा, लेकिन मिला अवश्य होगा। पशुओं को कर्जा तो नहीं मिलता है कम से कम। कहते हैं प्रत्येक अमेरिकन जब पैदा होता है तो उसके माथे $25,000 का कर्जा होता है। सब चीजें कर्जे पर ही मिलती हैं, मकान वगैरह सब हम देख करके एकदम कार मकान झमाझम देख के लगते हैं ये तो बहुत खास बात से हैं, लेकिन पूरी तनख्वाह किस्तें चुकाने में चली जाती है। इसलिए एक परम सत्य है कि मनुष्य गति में प्रत्येक प्राणी को अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता है। जो कुछ भी हमें अपने माँ बाप से प्राप्त हुआ था, हुआ है, हम उसे 10 गुना करके अपनी संतान को दे जाना चाहते हैं। दे जा पाएंगे या नहीं, ये भाग्य की बात है, लेकिन सबकी भावना तो ये रहती है कि मैं जिंदगी भर किराए के मकान में रहा हूँ तो मरते मरते कम बच्चों को 2 कमरे का फ्लैट तो दिलाई जाऊं। भावना तो रहती है ना। जिसे हम संपत्ति समझते हैं उसे 10 गुनी करके दे जाने की भावना रहती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रुपया पैसा मकान जायदाद सोना चांदी जवाहरात यही संपत्ति है और आपको माँ बाप से सिर्फ यही मिला था कि कुछ और भी मिला था? नमोकार महामंत्र मिला था कि नहीं मिला था माँ बाप से? क्यों? 24 तीर्थंकरों के नाम यहाँ मिले थे कि नहीं मिले थे? ये हमारे 200 तीर्थ हैं, ये हमें अपने माँ बाप से उत्तराधिकार के रूप में मिले कि नहीं मिले? और तो और ऐसा संस्कार कि बगल में कोई आदमी शराब पीकर बैठा हो तो हम उसके बगल में बैठ नहीं सकते हैं, बीड़ी सिगरेट पीता हो तो उसके बगल में हम बैठ नहीं सकते हैं, और कभी बाजार से निकलें और खुला मांस कहीं दिखाई दे जाए किसी दुकान पर तो उस दिन हमसे रोटी नहीं खपती है। ऐसा जो हमारा शुद्ध सदाचारी सात्विक शाकाहारी जीवन हमें अपने माँ बाप से प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? जो कुछ भी आप धार्मिक संस्कार के नाम पर हमें आज उपलब्ध है ये हमारे माँ बाप की देन है कि नहीं है, उनसे उत्तराधिकार के रूप में हमें मिला है ना। यदि ये संपत्ति है तो इसे भी दस गुनी करके दे जाने की भावना हमें क्यों नहीं होती है अपने बच्चों को? और नहीं होती है तो उसका मतलब ये है कि हम इसे संपत्ति नहीं मानते हैं। आप जानते हैं ऐसा नहीं करके आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जो गलती हमारे पिछली 125 पीढ़ियों ने नहीं की, भगवान महावीर से लेकर आज तक 2500 बरस हो गए हैं और 100 बरस में 5 पीढ़ियां हो जाती हैं। वो 100 बरस का आदमी होगा वो अपनी 5 पीढ़ियों को देख लेता है, 80 बरस तक पहुंच रहे होंगे तो 4 पीढ़ियां देखनी होंगी। क्यों? तो 100 में 5 देखने में क्या दिक्कत है? तो कितनी पीढ़ियां हो गई? 125 पीढ़ियां महावीर से लेके आज तक है। महावीर से जो तत्व ज्ञान, जो सदाचारी जीवन, जो धार्मिक संस्कार हमारी 125वीं पीढ़ी को प्राप्त हुए थे वो उनने अपने बेटों को दिए, उनने अपने बेटों को दिए और वो संस्कार आज हमें प्राप्त हुए हैं 125 पीढ़ी से लगातार। एक भी पीढ़ी ने बीच में एक गलती कर दी होती जब वो अपनी संतान को धार्मिक संस्कार नहीं देता तो हमारे तो उसका नुकसान सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं होता, आगे आने वाली सभी पीढ़ियों को हो जाता है। और ऐसा हुआ भी ना। हम कहते हैं भगवान महावीर के जमाने में, आदिनाथ के जमाने में, पार्श्वनाथ के जमाने में सारा देश जैन था भगवान, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं। और आज हम 0.5% कैसे रह गए? यही कारण है ना कि हमारी कई लोगों ने अपनी पीढ़ियों में एक गलती कर दी और उसका परिणाम आज है हमको भोगना पड़ रहा है। ये तो हमारा महाभाग्य है कि हमारी 125 पीढ़ियों में ऐसी कोई गलती नहीं हुई केला जी। क्यों? तो ये कितनी बड़ी संपत्ति है। सासू जी मरते मरते एक कड़ा बहू जी को दे जाती है तो वो बहुत संभाल के रखती है और जब मरने लगती है तो अपनी बहू को देती है और कहती है मेरे सासू जी ने दिया था। कहते ना हम बाप दादों के मकान को बेचते नहीं है। हाँ, पड़ा रहे गांव में, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, ये हमारे पिताजी की निशानी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं है कोई आदमी यहाँ ऐसा जो छाती ठोक कर एक कह सके कि मेरे पास 125 पीढ़ी पहले जो हमारे उनके पास जो संपत्ति थी, मकान था, रुपया था, पैसा था, सोना था, चांदी थी, जवाहरात थी, वो आज मेरे पास है, बता सकता है? क्यों मुकुंद भाई, एक पीढ़ी की बात तो जाने, दो पीढ़ी की, 125 पीढ़ी पुरानी चीज है दिनेश भाई आपके पास?
धर्म है
लेकिन धर्म है, भगवान महावीर का धर्म हमारे पास है। एक चीज ऐसी है कि जो 125 पीढ़ी पहले की हमारे पास है, कितनी बड़ी संपत्ति है, कितना बड़ा पुरातत्व है, कितनी बड़ी निधि है। जो गलती हमारी 125 पीढ़ियों में नहीं हुई, हमें लगता है कि आज वो गलती हम अपनी पीढ़ी में करने जा रहे हैं, क्या करके कि अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार न देकर। हमने तो ये भी देवलाली में एक सम्मेलन बुलाया था सही मुक्षुओं का, सारे देश के मुक्षुओं का, स्वामी जी की जन्म जयंती के समय पर। तो हमारे विचार का मुद्दा एक ही था जो आपने सब्जेक्ट रखा है कि हम अपनी आगामी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जा रहे हैं। ہم نے کہا ان مکن بھائی سے کہ آپ نے یہ دیولالی کھڑی کر دی دو سال میں. دنیش بھائی سے بھی کہتے ہیں کہ تم نے کیا لونا والا پروجیکٹ کھڑا کر دیا. لیکن بچوں میں کچھ ایسا دیا ہے کہ بے اسے سنبھالیں گے کہ ہمیں سنبھالنے پڑے گا. بولو پران پرنون بھائی. میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ یہ سب بناتے جاؤ گے اور آگامی پیڑھی میں دھارمک سنسکار نہیں دو گے تو ان کو سنبھالے گا کون, ان کا لابھ کون اٹھائے گا. مندر تو بہت بنائے, اب کچھ ہم آدمی بنانے کا کام کریں. بھگوان تو بہت براجمان کیے, اب ان کے پجاری تیار کریں, ہم بھگت تیار کریں. یہ ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے. اور مجھے پرسنتا ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ بات یہاں بتاتے ہوئے کہ ان لوگوں نے نرنے کیا کہ ہم ممبئی میں چار ودوان رکھیں گے, وہ یہاں رہیں گے نرنتر اسی کام کے لیے. اور وہ لوگ جو بھی ویکتی, کیونکہ ابھی مندروں میں لوگ اکٹھے ہوتے نہیں ہیں, مندروں میں بھی پاٹھشالا چلائیں گے صبح شام یہ لوگ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے تو ہم پریوار والے سالے مل کر وہاں پر اس سے کچھ دھرم کی بات سیکھیں. مندر میں بچے چلے جائیں گے اکیلے, پرش چلے جائیں گے, مہیلائیں تو نہیں جا سکتی. تو وہ ایک گھنٹے کو اپنے ہاں بلا ہے تو ایک سنشچت ریٹ پر انہیں ہم اس ودوان کو اپلبدھ کرائیں گے. اور اس کی یوجنا بھی ہم نے بنائی ہے. سارا خرچہ تو مکند بھائی وغیرہ اٹھائیں گے, قریب 50,000 روپے مہینے کا بجٹ بنایا ہے. اور سارا کام اکھل بھارتی جین ایوا فیڈریشن کی بمبئی شاخہ سنبھالیں گے, ویوستھا وہ کریں گے. میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسا انتظام کرنا پڑے گا. گاؤں کی ویوستھا الگ ہے اور بمبئی جیسے مہانگروں کی ویوستھا الگ ہے. پہلے ہمارے چت میں یہ بات جمنی چاہیے. آج سے 25 سال پہلے یدی ہم یہ یوجنا بناتے تو ہمیں سفلتا نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے پاس ودوان نہیں تھے. لیکن ہم نے آج 500 ودوانوں کا ایک بڑا بھاری فوج تیار کھڑی کر دی. ہم نے کہا آپ کو 25 چاہیے, ہم 25 دیتے ہیں. بولو کتنے چاہیے آپ کو؟ تو آج ہمارے پاس ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ یدی بمبئی والے چیٹ جائیں تو وہ چاہیں تو اس سنسکار دینے کے کام کو ہم بہت تیزی سے کر سکتے ہیں. اور بنا کسی بھید بھاؤ کے, بنا کسی دگمبر سے تانبر کے جھگڑے کے. یہ تو اپنا موٹو ہے, لکھا ہوا ہے بہت پہلے سے. دگمبر سے تانبر مٹی جین بنو. میں اس میں تھوڑا سدھارا کرنا چاہتا ہوں کہ دگمبر سے تانبر رہتے ہوئے جین بنو. ہم کسی کو بٹائے کیوں؟ تم دگمبر بنے رہو, تم سیتامبر بنے رہو. کچھ چیزیں تو کامن ایسی ہیں نا, ہاں کچھ چیزیں کامن ایسی ہیں نا جو دگمبر اور سیتامبر میں سب ایک ہیں, جہاں کوئی مت بھید ہی نہیں ہے. سات تتو, چھ درد, پانچ پاپ چھوڑنے چاہیے, چار کسائیں نہیں کرنی چاہیے. بولیے ان میں کہاں انتر ہے دگمبر اور سیتامبروں میں؟ نوکال مہامنتر میں کہاں انتر ہے دگمبر اور سیتامبروں میں؟ تتوا سوتر میں کہاں انتر ہے دگمبر اور سیتامبروں میں؟ بھکتامبر مہاکاویہ میں کہاں انتر ہے دگمبر اور سیتامبروں میں؟ ارے بھائی جو انتر ہے اس کو انتر ہت کر دو, جو انتر نہیں ہے اس کو اوپر لا کر اس لیول پر ہم اس کام کو آرمبھ کریں. کیونکہ سب سے بڑی سمسیا ہمیں اجیان سے لڑنے کی ہے, اسنجم سے لڑنے کی ہے, اسداچار سے لڑنے کی ہے. ہمارے گھر کی جو چوکے کی پوترتا ہے, کھان پان کی جو پوترتا ہے وہ سماپت ہوتی جا رہی ہے, ہمارے بچوں میں نہیں آ رہی ہے. ہمیں اس بڑی لڑائی کو لڑنا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر آپس میں ہی لڑنے کا کام کر رہے ہیں. देखो जैसे आदमी में खाने की इच्छा होती ना कहते जी मुक्सर से बोलते है ना, ऐसे जानने की भी इच्छा होती जिसे जिज्ञासा बोलते हैं। तो अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं कि जिन इच्छाओं का नाम अलग अलग है, मुक्सा जिज्ञासा। तो एक आदमी की इच्छा लड़ने की भी होती है, जानते हैं, और लड़ने की इच्छा को भी वो पूरी किए बिना नहीं रह सकता है। जब भूख से आदमी तड़प जाता है ना, तो किसी को लड़ने को नहीं मिले तो वही वो तड़प जाता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है। 2000 वर्ष पहले एक दार्शनिक हुआ जिसका नाम है अरस्तु, पढ़ा होगा एरिस्टोटल। उसने एक ब्रेटन का सिद्धांत दिया, सुना कभी? वो ये कहता है कि सब में युद्ध की इच्छा होती है, अपने को प्रदर्शन करने की इच्छा होती है। ये सब भीड़ में बैठे हैं ना, और चार आदमी यहाँ स्टेज पर बैठ गए, क्यों? तावलों की इच्छा नहीं होती है कि एक दफे पंडित जी सामने बैठे और हम यहाँ बैठे, भले ही 2 लाख रुपया खर्च हो जाए दिनेश भाई, 5 मिनट को तो बैठाओ। और आप लोगों की इस कमजोरियों को इन लोगों ने पकड़ लिया है, तो लाखों रुपया लूटते हैं आपसे, जो यहाँ बैठा है 5 मिनट में बैठा करके मालाएं डाल डाल करके। हम मुफ्त में बैठते हैं, घंटों बैठते हैं। तो हर एक आदमी को सबसे कुछ अलग होने की, कुछ अलग है ऐसी इच्छा होती है, और उसे यदि प्रकट करने का अवसर नहीं मिले, वो अरस्तु लिखता है, तो वो कहीं ना कहीं वो उपद्रव करेगा, किसी को मारेगा, पीटेगा, डाकू बन जाएगा। नाम तो होता है ना डाकू बन जाने पर भी, क्यों? दाऊद का नाम तो रोजाना आता है ना अखबारों में, हमारा तो कभी आता ही नहीं कि प्रधानमंत्री के दाऊद, बस दो ही भरे भरे पड़े। तो यदि तुम प्रधानमंत्री बन के नहीं आ पाएगा नाम, तो दाऊद बन के आएगा। यानी वो कहीं ना कहीं लड़ेगा, और हमारी जो एनर्जी है वो अच्छे काम से हमको यश नहीं मिलेगा तो हम बुरे काम में लगाएंगे। तो उसने कहा कि इसको एक ब्रेटन, ब्रेटन समझते किसे बोलते हैं, कि जब आप लोग कब्जियत हो जाती है, क्या बोलते हैं आपकी गुजराती में कब्जियत को, कब्जियत बोलती है, तो एक चूर्ण लेना पड़ता है, उसे ब्रेटन बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, तो उससे हमारा दस्त साफ हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी ये लड़ने की कब्जियत हो गई, वो पचा नहीं पाए हम, तो उसके लिए ब्रेटन का सिद्धांत। तो ये जो खेल शुरू हुए हैं ना, क्रिकेट और जितने बड़े बड़े, तो आज विश्व के लेवल पर, अब ये क्रिकेटरों का ही नाम देखिए, प्रधानमंत्री का कम, सचिन तेंदुलकर का ज्यादा, क्यों? मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए, और उसे अपनी जीतने की इच्छा, मैं इससे जीता, ये जीतने की इच्छा अंदर में जो है उसको कहीं ना कहीं पोषण मिलना चाहिए, उसकी खुराक मिलना चाहिए, नहीं तो जी लड़ मरेंगे। जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है यूनिवर्सिटी में, कभी वो नेतागिरी करता नहीं देखा जाएगा, और जो थर्ड क्लास ही पास होता है, कभी दो दो साल में एक क्लास पास करता है, पक्का नेता वही होता है। क्यों? तो पढ़ाई करके तो वो सबके सामने आ नहीं सकता, अखबारों में नाम लिखा नहीं सकता, लड़ झगड़ के निपटा सकता है। अरस्तु ने इसका नाम रखा ब्रेटन का सिद्धांत, और तब से ये खेलों की परंपरा शुरू हुई है कि हर आदमी में जिस खेल की में प्रतिभा हो तो उसको इतना मान दो उसके कारण से, कि जिसकी वजह से उसका जो वो ब्रेटन हो जाए। तो यहाँ ये कहते हैं कि जैसे क्रोध का, मान का ये ब्रेटन होना चाहिए, उसे अवसर मिलना चाहिए, मान के मान पोषण का अवसर मिलना चाहिए, ख्याल में आई ना? तो भगवान महावीर कहते हैं कि हम ब्रेटन की बात नहीं करते हैं, अवसर मान का अवसर दें, हम लड़ने का अवसर दें, एक कैसे हो सकता है? हमारे कहते हैं मान का दमन होना चाहिए, हमारे यहाँ सम है, हमारे यहाँ दम है, हमारे यहाँ जो संस्कार हैं जो उतनी पीढ़ियों से चले आए हैं वो संस्कार हमारी आगामी पीढ़ी में कैसे जाए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए प्रतियोगिताएं रखनी पड़ेंगी। जैसे अभी बता घोषणा करी एक, हम कौन आया फर्स्ट, कौन आया टॉप पर, देखो कितने लोग रस लेते हैं। अब जब प्रयोग करके देखते हैं धर्म के क्षेत्र में भी, ख्याल में आए ना, तो कौन बनेगा करोड़पति, जितना लोकप्रिय होता है उतना ही लोकप्रिय हम धर्म के नाम पर कोई ऐसा बना देते हैं, कौन पर बनेगा करोड़पति के नाम पर कुछ ना कुछ बना देते हैं तो कितने लोग लाभ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तो हमें इस बात की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि हमें आगामी पीढ़ी में संस्कार देना है, अपने बच्चों को भी, ये हमारी संपत्ति है जो हमें उत्तराधिकार में सवा सौ पीढ़ियों से आज तक प्राप्त होती रही है। तो हम आपस में जो ये लड़ने का काम है, आपस में जो लड़ने का काम है वो बंद करके इस अज्ञान के विरुद्ध लड़ें, असदाचार के विरुद्ध लिखें, बिगड़ते हुए संस्कारों के विरुद्ध हमारी लड़ाई होनी चाहिए और हम सब मिलके करें। एक देश का एक नेचर है ना कि जब पाकिस्तान से झगड़ा शुरू होता है तो सारा देश एक हो जाता है, चाइना से झगड़ा हो तो हिंदू मुसलमान सब एक हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो जब बाहर वाले से झगड़ने का हमें मौका मिलता है तो हम एक हो जाते हैं, और जब बाहर से झगड़ा खत्म होता है तो हम आपस में लड़ने लगते हैं। फिर महाराष्ट्र गुजरात लड़ता है, फिर हिंदी और गुजराती लड़ते हैं, फिर बाहर का झगड़ा खत्म हुआ, डर खत्म हुआ और हमारी अंदर की लड़ाई शुरू हुई, ये नियम है। इसलिए आपने देखा होगा नेता लोग क्या करते हैं, मुशर्रफ साहब कितना कड़क बयान कैसे दिया, हम हिंदुस्तान को देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कल तक तो मीठी मीठी बातें करते थे कि तुम्हें मालूम नहीं है अंदर विद्रोह हो रहा है, हिंदुस्तान का डर बता करके फिर एकता को कायम करते हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब तक अज्ञान के विरुद्ध हमारी लड़ाई नहीं छिड़ेगी तो हमारी ये आपस की लड़ाई बंद नहीं होगी। लड़ना तो हमारा नेचर है, लड़ना तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान में जब कोई शादी करता है तो तलाक की बात कोई सोचता है? एक लाख में भी एक आदमी का तलाक कभी होता देखा था आपने? और विदेशों में तो साल दो साल में तलाक 80% लोगों के तलाक हो जाते हैं, ये क्यों होता है? उससे भी मैंने एक कारण खोज के निकाला है दिल्ली से कि हमारी सामुदायिक फैमिली है, सास बहू एक साथ रहती है, देवरानी जेठानी एक साथ रहती है, तो उन बहुओं को औरतों को लड़ने के लिए बहुत अच्छे प्रतिद्वंदी तैयार रहते हैं। देवरानी जेठानी लड़ लेती है जितना लड़ना होता है, ननद भाभी लड़ लेती है, सास बहू लड़ लेती है, सारी लड़ास निकल जाती है। अब वहां कोई है ही नहीं दूसरा मियाँ और बीवी, तो लड़ास निकले कहाँ, मियाँ बीवी में धमाधम होता है। अरे सास बहू का तलाक हो जाएगा तो क्या होगा, अलग अलग रह जाएंगे। दो भाइयों जेठानी देवरानी का तलाक हो जाएगा तो क्या होगा, दो मकान बन जाएंगे, दो दुकानें बन जाएंगी, डबल धंधा हो जाएगा, नुकसान क्या होने वाला है, है? लेकिन वो पति पत्नी का झगड़ा होता है क्योंकि घर में कोई दूसरा लड़ने को है ही नहीं, करें क्या। दूसरा कारण ये है कि पहले हमारे यहाँ मर्यादाएं थी, घूंघट था, चल गई ना, तो पति पत्नी को दिन भर एक दूसरे को देखने को मिलता ही नहीं था, कितनी मर्यादाओं में रहना पड़ता था, है ना। तो उनकी वो लालसा अंत तक एक दूसरे को देखने की, वो अंधेरे में देखने की लाइट तो थी नहीं, क्यों टिमटिमाते दिया में देखने की तो दुर्गुण को दिखता ही नहीं था, अच्छा ही अच्छा ही दिखती थी। अब इतने जमाने में सारा खुला मामला, इतनी तेज लाइटें और 24 घंटे कोई दूसरा है ही नहीं, तो एक दूसरे के देखने का आकर्षण कब तक देखे एक सूरज, समझे ना। वही वही सूरत, एक यदि एक्टर आता है ना तो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, लेकिन एक ही सूरत कब तक देखते रहे, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, नया नया एक्टर आना चाहिए तो हमको अच्छा लगता है ना। تو میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ لڑاس ہے کہیں نہ کہیں تو نکلے گی اور نکلے گی. تو دیکھا جسے بولتے ہیں اسے اپنی ہندی میں بولیں گے لڑاس, لڑنے کی اچھا. تو یہ وہ لڑنے کی اچھا جو ہے ہم اپنے کھیل کے مادھیم سے ہم دھارمک کارکرموں کو بھی سنسکار دینے کے کارکرموں کو بھی ایسا بنائیں کہ جس میں ان کی دیکھا بھی نکل جائے, کون جیتا کون ہارا, اس کو پرسکار اس کو پرسکار. جتنے کھیل چلتے ہیں نا ٹی وی وغیرہ پہ وہ سب کھیل دھرم کے بنا لیے ہیں بچوں نے ہمارے. ہم نے ودیارتھیوں کو ٹرینڈ کیا ہے اس میں, ہمارے سب ودیارتھی پریوشن میں 500 جائیں گے نا ہر گاؤں میں چلے گا کون بنے گا گیان پتی, کون بنے گا سمیک درشن پتی, کون بنے گا چاریتر پتی, چلا دے. اور بہت سفلتا ملتی ہے ہمیں دنیش بھائی, ہمارا یہ پریوگ بھی دیکھو آپ بہت تیزی سے کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ بہت سمسیا ہے, بڑی سمسیا ہے کہ یدی ہماری آگامی پیڑھی میں دھارمک سنسکار نہیں رہے تو کیا ہوگا. دھارمک سنسکاروں میں سب سے بڑی بات تو ہے کھان پان کی. ہمارا یدی کھان پان پوتر نہیں رہا, ہماری یدی چوکے کی شدھی نہیں رہی تو ہم اپنے بچوں کو ماس مدرسے سے بچا نہیں سکتے. تو آپ نے کہتے نا کہ ہم آلو جمی کر نہیں کھائیں گے, کیا جمانہ بات کرتے ہو پنڈت جی آپ, وہ تو بہت جمانہ بہت پرانا گیا آلو جمی کرنے کا. لیکن میں کہتا ہوں بیٹا آلو جمی کند کو منع کرو گے تو یہ ماس مدرسے سے مشکل سے بچیں گے. یہ پہلے باڑ لگانی پڑتی ہے. کیا مطلب, آپ ویاپاری ہو نا کہ مال خریدنا ہے تو نکی کر لیا کہ مجھے اس بھاؤ لینا ہے اور اس نے کر لیا اس بھاؤ بیچنا ہے تو تھوڑا وہ کہتا سبایا کر کے بتاؤ اور وہ کہتا کون لگاؤ کی, کیوں بارگننگ کے لیے جگہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے تھوڑی, تب اتنے میں سودا پتے گا. تمہیں جتنے میں خریدنا ہے اتنے میں بتا دیا تو سودا نہیں پتے گا, جتنے میں بیچنا ہے اپنے کو نیٹ بھاؤ بتا دیا پھر آ کر کے ہو گئے کہ اس سے کم ایک پیسہ نہیں ملے گا تو سودا نہیں پتے گا, کیوں بارگننگ. تو ایسے ہی ایک اس کے آگے آپ لگاؤ گے کنٹرول تو یہاں بچاؤ گے. کیسے کہ ایک ادھی اس نے راتری بھوجن چھوڑ دیا اور آلو جمی گند چھوڑ دیے تو گیا کام سے, کیوں کہ نہ پھر کسی پارٹی میں زیادہ جا سکتا ہے, سمجھے نا, پھر اپنی شادیوں میں جانے میں بھی پھل کھانا پڑیں گے وہاں, جیسے ہم کو اور ہمارے بچوں کو کھانا پڑتے ہیں, کھا ہی نہیں سکتا. تو وہ پارٹیاں چھوٹ گئیں, ہوٹل چھوٹ گئے, بار چھوٹ گئے, تو نہ معلوم کیا کیا چھوٹ گئے, سمجھ لینا. بس وہ جو بہت بڑا دشچکر ہے جو روزانہ اخباروں میں آتا ہے کہ بار میں اتنی لڑکیاں پکڑی گئیں, اتنے لڑکے پکڑے گئے, اتنا یہ ہو گیا, اتنا یہ ہو گیا, وہ ان سے بچانے کا یہ اپائے ہے. کیوں کہ وہاں سے ایسا کھان پان ملے گا ہی نہیں, وہ جو شدھ صاحب تو کھان پان ملے گا ہی نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یدی اسے ماس مدرسے سے بچانا ہے, یدی اسے باروں میں جانے سے بچانا ہے, تو آپ کو یہ دھارمک جو سنسکار اپنا شدھ کھان پان اپنا باپ دادوں سے چلا آ رہا ہے وہ سب ایک کا نہیں ہے. چیتامروں میں بھی ویسا ہی ہے, جگمروں میں بھی ویسا ہی ہے, تھانک واسیوں میں بھی ہے, وہ کی بولیوں میں اس میں کیا مت بھید ہے. کون کہتا ہے کہ راتری بھوجن کو سمرتھن کرتا ہے, کون ایسا پنتھ ہے اپنے ہاں جو کہتا ہے کہ انچنا پانی پیو, انجنے پانی کی تو سمسیا ہی ختم ہو گئی. اب تو ساری دنیا چھنے کا چھنا چھنے کا چھنا, نہ معلوم کتنا چھنا پانی پینے لگ گئی ہے. کیوں پہلے 50 سال پہلے ہمارے انچنے پانی کے تیاگ کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, اور جب ہم پڑھتے تھے تو رومال رکھتے تھے جیب میں اور کسی ریلوے اسٹیشن پہ جاتے تھے تو نل پر رومال لگا کر پانی پیتے تھے تو چاروں طرف کے دیکھ کے لوگ ہنستے تھے, ہمیں شرم لگتی تھی تو لوگ کیا کہیں گے. ہمارا پرمات پرکاش ہے نا, تو اسکول میں جاتا تھا تو چھنا ساتھ میں رکھتا تھا اور نل پہ چھنا لگا کر کے پیتا تھا تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا پونگا پنڈت, سارے اسکول میں. ویسے اس کا ارتھ تو بہت اچھا ہوتا ہے, پنڈت پنگ پنگب پنڈت, مانے پنڈتوں میں سروشریشٹھ. لیکن دھیرے دھیرے بدنام ہو گیا. ایک دفعہ لڑکوں نے بہت مذاق اڑائی اور اس کی تھیلی پھاڑ کے پھینک دی رومال, تو پرنسپل آیا کہ کیا ہوا کیا ہوا کہ یہ ہوا, تو اس نے کہا بھی یہ ہوا, تو اس نے پورے اسکول کے ہر نل پر پھیری لگوانا انواری کرا دیا. اس لیے ان کا آدرش ودیا مندر تھا آر ایس ایس والوں کا, پورے مندر اسکول میں بنا چھننے کا کوئی نہیں ہوا. تو میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ ایک دن ہم اس چھنے پانی کے پینے میں شرم کا محسوس کرتے تھے اور لوگ ہمارے مذاق اڑاتے تھے, اور آج ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنیش بھائی نے یہاں پر چار بوتلیں کیوں نہیں رکھی, کیونکہ میں نے ایسی کوئی ٹیبل نہیں دیکھی ایسی ویاخیان کی جہاں جاتے ہیں کیوں جتنے آدمی اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک ایک بوتل رکھی ہوتی ہے, کیوں دو بوتل نہیں پانی کی بوتل رکھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, کیوں کوئی آدمی سیدھا نل کا پانی نہیں پینا چاہتا, بالکل فلٹر واٹر. تو ہمارا بھگوان مہاویر کا جو یہ سدھانت تھا انچنا پانی نہیں پینے کا, آج سارے وشو نے ایکسپٹ کر لیا کہ نہیں کیا, بولیے اس سے سدھ ہوتا وہ کتنا اپیوگی تھا, وہ مذاق اڑانے والے کتنے غلط تھے. ابھی امریکہ میں ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے, اس میں آیا ہے کہ آپ صبح 10 بجے سے لے کر اور شام کے 5 بجے تک جتنا بھی بھوجن کرنا ہو, کیا ڈیری پروڈکٹ اور اناج جتنا کھانا ہو کھاؤ, لیکن 10 بجے کے پہلے اور 5 بجے کے بعد ڈیری پروڈکٹ اور اناج دونوں نہیں کھاؤ تو کبھی آپ بیمار نہیں پڑو گے, کبھی آپ کو فیٹ کی سمسیا نہیں ہوگی, وزن نہیں بڑھے گا. ایسا ریسرچ ہوئی ہے کہ سب زیادہ دن میں کھائیں گے تو کیسے نہیں بڑھے گی, جن میں سورج کا بہت تتاب رہتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی پاچن شکتی چوگنی ہو جاتی ہے, اور یہ رات میں وہ بالکل معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لوگ ہماری یہ کہتے ہیں جینیوں کے بھوجن میں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ایک بھوجن میں تو رہتا ہے 5-6 گھنٹے کا انتر اور دوسرے میں 18 گھنٹے کا فرق, کیوں صبح 10 بجے کیا شام کو 5 بجے کیا تو 7 گھنٹے کا فرق رہا نا, اور پھر دوسرے دن صبح 10 بجے 17 گھنٹے کا فرق ہو گیا, کیسے ہوگا. لیکن اپن لوگ تو پریوگ کرتے ہیں نا, کوئی آپ کو معلوم پڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے کیوں. میرا سیدھا سا ترک ہے کہ آپ کی موٹر راتری میں گیریج میں رکھی رہتی ہے تب کتنا پیٹرول کھاتی ہے, بولو مٹنگی کتنا کھاتی ہے, بالکل نہیں کھاتی ہے, اور جب چلتی ہے تب 12 کلومیٹر چلے تو 1 گیلن چلا جاتا ہے, کیوں گیلن یا لیٹر جو بھی, سمجھ گئے. تو چلتی ہوئی موٹر پیٹرول مانگتی ہے, گیرج میں رکھی ہوئی موٹر پیٹرول نہیں مانگتی ہے, سوتا ہوا آدمی بھوجن نہیں مانگتا ہے, دوڑتا ہوا آدمی بھوجن مانگتا ہے. جن کو کام کرتے ہیں جن کو بھوجن چاہیے, سورج کی روشنی کا پرکاش ہے, پاچن شکتی اچھی ہوتی ہے. تو ہمارے دن کے بھوجن کا جو سدھانت ہے وہ بھی آج وشو دھیرے دھیرے اسے ایکسپٹ کر رہا ہے. دیکھیے ہمارے منی راج ہیں, خاص کر دگمبر منی راجوں کو جا کر کبھی آپ دیکھیے, کم سے کم 500-600 ہو گئے نا گیان چند جی, اس دن میں ایک دفعہ بھوجن کرتے ہیں صرف 2-10-11 بجے کے بیچ میں, کھڑے کھڑے آہار لیتے ہیں, سوکھا سوکھا انترا ہو جائے تو وہ بھی نہیں, دوسری دفعہ پانی بھی نہیں پیتے ہیں. آپ لوگوں کو کلپنا لوگ کی باتیں دکھیں گی, ایک دفعہ دیکھ کے تو آؤ, اور وہ 90 برس کے پہلے میدان چھوڑتے ہی نہیں ہیں. سچن جیسی عادت ہے کہ شتک پورا نہیں کر پاتے ہیں, اور اس کے پہلے ہی کبھی 99 پہ کبھی 96 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, بس اس کے پہلے جاتے ہی نہیں. اور ہم اگر 50 برس کے نہیں ہوئے اور جیب میں 50 گولیاں مل جائیں گی, کیا حالت ہے. کوئی کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ 9 مہینہ کا گرو ہو, کوئی کی حالت ایسی ہو رہی ہے ڈائبٹیز ہے, نہ مانو کتنی کتنی بیماریاں گھیر لیتی ہیں, اور ان کو کیوں نہیں گھیرتی ہیں, اس سے بھی سدھ ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ ہمارا یہ کام 24 گھنٹہ چالو رہتا ہے. بہت سے لوگ بولے پنڈت جی ہمیں آپ جیسا راگ دیش تو ہے نہیں کہ کب کھانا کیا کھانا کیا نہیں کھانا, ایک گیت راگی تو تم ہی ہے. ڈاکھانا ڈاکھانا جانتے ہو, پوسٹ آفس اور وہ پوسٹ باکس لیٹر باکس, اس میں کیا فرق ہے؟ پوسٹ باکس اور پوسٹ آفس اس میں کیا فرق ہے؟ بولو مبین بھائی, میں بتاؤں, جو 24 گھنٹہ کھلی رہے وہ لیٹر باکس, اور جو سمے پر کھلے سمے پہ بند ہو جائے وہ پوسٹ آفس. سمجھے نا؟ تو ہم نے اپنے اس پیٹ کو مکھ کو لیٹر باکس بنا رکھا ہے, ہم کہتے بھیا اسے تم پوسٹ آفس بناؤ. 24 گھنٹہ چالو, 24 گھنٹہ چالو. اور کیا, ایک آدمی آیا تو لیٹر باکس میں مرا ہوا سانپ ڈال گیا, لیٹر باکس نے منع نہیں کیا. ایسا ہمارا مانیٹر کوئی کچھ بھی ڈال دے, کیا ڈاک خانے میں جا کر کوئی وہ مرا ہوا سانپ ڈالتا تو ڈالنے دیتے؟ تو میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ ہمارے جو سنسکار ہے, دن کے بھوجن کی ہمارے یہاں مہیما بتائی ہے, راتری کے بھوجن کا ہمارے یہاں جو تیاگ بتایا ہے, وہ بھی ہمارا یہ سنسکار ہے. یعنی وہ ہماری کسی بھی روپ میں, کسی بھی روپ میں کا مطلب کیا, کہ ہم راتری میں اناج نہیں کھائیں گے, کہ ہم 8 بجے کے بعد نہیں کھائیں گے, تو ہم تو 10 بجے ہم تو پہنچتے ہیں گھر, تو 10 بجے کے بعد نہیں کھائیں, کچھ تو کرو, نکی کرو, اناج نہیں کھائیں گے, دودھ لیں گے پھل لیں گے, دودھ نہیں لیں گے پھل نہیں لیں گے, جو بھی کرنا ہو. میرے کہنے کا مطلب کچھ نہ کچھ تو مریادا میں آؤ. ایک دفعہ آپ نے ایک چیز بھی چھوڑ دی کہ میں رات کے 10 بجے بعد اناج نہیں کھاؤں گا, تو اس سے کیا سب سے بڑا فائدہ ہوا گیان چند جی, کہ آپ نے یہ سویکار کر لیا سدھانت کے روپ میں کہ راتری بھوجن بری چیز ہے. اب باقی چیز آپ کی مجبوری ہے تو آج نہیں تو کل چھوڑیں گے, کل نہیں تو پرسوں چھوڑیں گے, اور نہیں تو ہماری عمر پہ آئیں گے تو چھوٹ ہی جائے گا. سوکھی سوکھی روٹی ایک مشکل سے پتا پاؤ گے دن بھر میں, کیوں کھاؤ گے کیسے دس دفعے؟ تو میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ ہمارے جو ساتوک جیون تھا پہلے, سداچاری جیون تھا, اور جو ساموہک پریوار میں رہنے کی پروتی تھی, اس نے بہت کچھ ہمارے کو اس مریاداؤں سے بچا کے رکھا تھا. اور جس ہوٹل سے ہم بچ گئے, بار سے ہم بچ گئے, تو ہمارے جیون میں سداچار آ سکتا ہے. ہمارے بچوں میں وہ کیسے آئے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے, اور اس کو سوچنے کے لیے جین تتو گیان سے اسے پرچت کرانا پڑے گا. اکیلے باہر کے کریا, اسے ہم باہر کا کریا کانڈ کہہ کے رہ جائیں گے. یعنی باہر کے اکیلے کریا کانڈ سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ جین تتو گیان کیا ہے یہ بھی ہمیں اپنی پیڑھی کو بتانا پڑے گا. دیکھو میں ایک آپ کو بہت مارمک بات کہتا ہوں, ہندو دھرم میں تو ایک برگ پورا کا پورا ایسا ہے کہ جس کا کام ہی دھارمک ہے, مانے باقی کی ہندو سماج کے دھارمک کاموں کا انوشٹھان کرانا, ان کا پوجا پاٹھ کرانا, ان کا سوادھیائے کرنا, گرنتھ لکھنا پڑھنا, سب کی سرکشا کرنا. لیکن جین سماج میں تو ایسا کوئی ہے نہیں, برہمن ہے نا, ایسا اپنا تو کوئی ہے نہیں. تو وہ جنوانی کی سرکشا, جنوانی کا پٹھن پاٹھن, یہ سارا کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسا برگا لگ نہیں ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اتنے الپ سنکھیک ہیں کہ ایک ہندو یدی اپنے بیٹے کو رام کی کہانی نہیں سنائے گا, ایک مسلمان اپنے بیٹے کو خدا کا پریچے نہیں دے گا, تو بھی ان کے بچے رام کی کہانی سے اپرچت نہیں رہیں گے, کیونکہ ٹی وی پہ رامائن دیکھیں گے, مہابھارت دیکھیں گے, تو سب ان کے دھیان میں آ جائے گا. ہر فلم میں ایک بڑے بڑے ہیں وہ جائیں گے مندر میں ماتھا ٹیکیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ کریں گے یہ کریں گے, تو وہاں انہیں دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں؟ اور نہیں, سنجے جیل بھی جائے گا تو بھی وہ گنیش جی کے مندر میں ماتھا ٹیکنے جائے گا, وہاں جائے گا کہاں, ہمارے اجمیر میں, وہاں دعا لینے جائے گا, سب جگہ جائے گا. کوئی جین مندر میں آیا کبھی؟ जैन तो भगवान कुछ करते ही नहीं, आगे करे क्या। तो अभी वो जो भगत है ना संजय दत्त के, जब वो जाएगा गणेश जी के मंदिर तो उन बच्चों को मंदिर जाने की प्रेरणा मिलेगी कि नहीं। अमिताभ बच्चन जाएगा जगह जगह कन्याकुमारी और फलानी जगह, क्योंकि वो मंगलिक है, उनकी बहू और बेटा और बड़ा बड़ा, क्यों तो उनको ये सीखने को मिलता है, ये तो उनके आदर्श है ना। कौन इस सिनेमा के एक्टर, एक क्रिकेट वाले, जो जो ये करेंगे वो उनके बच्चे करेंगे, तो आधा हिंदू धर्म को तो वो उसमें ही सीख लेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को हमने महावीर की कहानी नहीं सुनाई तो भैया वो महावीर की कहानी जाने बिना ही रह जाएंगे, ये समझ लो आप। यदि हमने अपना तत्व ज्ञान उन्हें नहीं सिखाया, हमने अपना सदाचारी जीवन उन्हें नहीं सिखाया तो बिल्कुल उससे, क्योंकि सारे देश में वातावरण नहीं है। हम कितने बढ़िया सीरियल बनाए भगवान महावीर पे टीवी पे, कोई देखेगा ही नहीं, क्यों? महावीर के भगत देखेंगे कितने हैं उंगली पे, फेल हो जाएगी। अब रामायण बनाएंगे तो सारा विश्व देखेगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि हमारी संपत्ति को जो हमारे बाप दादों की है उसे हमें सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना है, हम समझते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी है, तो हमारे लिए ये इंतजाम करना ही पड़ेगा कि हम निश्चित रूप से उस चीज को आगे बढ़ाएं। और सब मिलकर क्या है, कितने से लोग हैं, आधा परसेंट लोग, जो 20% 22% मुसलमान हैं उन्हें भी संगठित होने की आवश्यकता महसूस होती है ना। जो हिंदू 80% हैं उन्हें संगठित होने की आवश्यकता महसूस होती है, और हम आधा परसेंट हैं और हमें संगठन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, गजब हो गया। हमें लड़ाई सूझती है, कैसा है ये व्यापारी समाज, जिसे व्यापार कहते हैं, व्यापारी तो बनिया बुद्धि को कहते हैं, बनिया बुद्धि माने वो अपने काम बनाए उसे बोलते हैं बनिया, वो बिगाड़ है उसका नाम बनिया थोड़ी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन की पवित्रता के लिए, हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, हमारी आगामी पीढ़ियों में भगवान महावीर के सिद्धांत जाएं, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ अवश्य सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा। जिन लोगों को लड़ना है उन्हें लड़ने दो, लड़ने वाले लोग हर समाज में बहुत लिमिटेड होते हैं। मैं पक्की बात बोलता हूँ, एक नब्ज की बात बोलता हूँ आपको दिनेश भाई, ये मुकदमेबाज लोग होते हैं ना, चाहे श्वेतांबरों की तरफ से जाएं, चाहे दिगंबरों की तरफ से जाएं, चाहे किसी की तरफ से जाएं, तो गिनती के लोग होते हैं, अदालत की चिड़िया बोलते हैं, क्या बोलते थे, बर्ड ऑफ कोर्ट बर्ड, कोर्ट बर्ड, भाई उन्हें उसके बिना भोजन नहीं पचता है ना। अब बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, बाकी के सब लोग शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं। देखिए आज खान पान में हमने दूसरे को बुलाते हैं कि नहीं, अब बेटी कोई हमारा अच्छा करोड़पति का लड़का मिल जाए सीतांबरों में तो दिगंबर उन्हें देते कि नहीं देते, और सीतांबर दिगंबरों को देते कि नहीं देते, क्यों? मेरे को अभी आंख का इलाज कराना है तो मैं दिगंबर डॉक्टर देखता हूँ कि बढ़िया डॉक्टर, बोलो कोई कहे कि आप ऑपरेशन कराने जा रहे हो, वो डॉक्टर तो मुसलमान है, तो होगा भैया अच्छा तो करता है ना, कह रही मालूम नहीं उसने अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है, वो उसका पर्सनल मामला है, हमें क्या मतलब। ऑपरेशन तो अच्छा करता है कि दिन में 3 बोतल पीता है, पीता होगा कि ऑपरेशन भी बोतल पी करके ही करता है, कि हमने सुना है कि बिना पिए करे तो अच्छा ऑपरेशन नहीं कर सकते, पीने दो ना, कितना दीदरागी बन जाते हो, क्यों? और तत्व सुनना हो तो पंडित कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्या करता है, साथ में पानी तो नहीं पीता, इसकी इतनी जांच करेंगे तो भगवान ही मालिक है। मैंने 2 गुजरातियों को आपस में बात करके सुना, घबराना नहीं, पंडित कौन सा है, कहाँ का है, बोलता तो बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत बढ़िया कहता है कौन, ये पंडित है, अपना जैन है, महावीर का भगत है, सदाचारी है, मास मद्रास ने कभी देखा ही नहीं उस तरफ, वो तो ठीक है लेकिन है कौन, है कौन, कहाँ है महावीर का भगत, वो तो ठीक है, आप ना गुजराती छे ना, गुजराती तो नहीं है, एकदम पाकिस्तानी आ गया हो, क्या क्या हो गया, आश्चर्य को हो क्या गया है, इसको पंडित गुजराती चाहिए, लड़की सबकी चलेगी, डॉक्टर कोई सा भी चलेगा, काठियाबाड़ी को क्या पंडित काठियाबाड़ी चाहिए, ये क्या है? मेरी इसमें क्या गलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं गुजरात में पैदा नहीं हुआ, और तुम हिंदी प्रांत में पैदा हो जाते, सच्ची बात बोलो तो हिंदी होते के गुजराती, क्या हम तो श्वेतांबर है, क्या श्वेतांबर हो, श्वेतांबर कुल में पैदा हो गए तो श्वेतांबर, हम दिगंबर कुल में पैदा हो गए तो दिगंबर है, यदि हम श्वेतांबर कुल में पैदा हो गए होते तो तुमसे कट्टा जाते श्वेतांबर होते, क्यों तुम दिगंबर कुल में पैदा हो गए होते तो तुम दिगंबर होते, हमने कहां बुद्धिपूर्वक दिगंबर श्वेतांबर को स्वीकार किया, क्यों तो हम तो बाप दादों के यहाँ जहाँ पैदा हो गए तो हो गए, इसमें हमारे हाथ में क्या था कि हम गुजरात में पैदा नहीं हुए हिंदी में पैदा हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, महावीर गुजराती थे कि हिंदी, क्यों पासनाथ गुजराती थे कि हिंदी, छोड़ो पासनाथ महावीर को, वो तो चले पासनाथ तो हमारे चलेंगे, लेकिन हिंदी थे ना, तो भगवान गुजर हिंदी चलते हैं तो पंडित हिंदी क्यों नहीं चलेगा। कहने का मतलब है इस बाड़ों को हमें तोड़ना पड़ेगा, यदि हमको सचमुच अपनी आगामी पीढ़ी में संस्कार देना है। आप नहीं तोड़ोगे दिनेश भाई तो क्या होगा, क्यों पंडितों की फौज तो हमारे पास है, तुम अपने बच्चों को सिखाओगे कैसे, बोले हमारे यहां आना पड़ेगा कि नहीं, तुम्हें भी हमारे पास आना पड़ा और तुम्हारे बच्चों को भी हमारे पास आना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है दूसरा, बच्चे तुम्हारे पास है, नगद माल तुम्हारे पास है, क्यों तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ये सब बाड़ों को तोड़कर एक अपनी भावी पीढ़ी में कैसे धार्मिक संस्कार रहे, हमें वो प्रयत्न करना चाहिए। एक बात मैं मुकुंद भाई और मोटानी जी को कहना चाहता हूँ, पीयूष भाई आपके लिए कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते पंडित जी आप क्या बात करते हो, हमारी वर्तमान परंपराओं में कितना फर्क है श्वेतांबर में दिगंबर में, अरे तत्व ज्ञान में भी इतना पता नहीं है, हाँ पता तो तुम्हें है, हमें कहां से आया। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं भाई साहब कि वो हम कब कह रहे हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि दिगंबर श्वेतांबर मती जैन बनो नहीं, दिगंबर श्वेतांबर रहकर जैन बनो, क्योंकि हम तुमसे कहो मिटो तो तुम झगड़ने को तैयार हो, हाँ तो तुम श्वेतांबर तुम श्वेतांबर, लेकिन अब तो हम तत्व की बात कहते, सुनो ना वो तत्व की बात कहते कहते यदि सचमुच तुम्हारी बात सच्ची है तुम्हें भरोसा है तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा फलक मिलता है। जब अपन ने प्रयोग किया ना धर्म सदी सर्कल में, हमने वहां बनाया ना जाना अमेरिका में, तुम्हारे बेटे ने किया ना, सफलता मिली कि नहीं मिली, सब लोग कितने बिना किसी भेदभाव के तत्व ज्ञान कितनी गहराई से सुनते हैं, हमें आज तक जी ने हमसे पूछा नहीं देखा मैं श्वेतांबर का झगड़ा। तो हमारे पास यदि सच्चा महावीर का सिद्धांत है तो जितना बड़ा फलक हमें मिलेगा हम अपना तत्व ज्ञान उतनी अधिक जगह पहुंचा पाएंगे, उतने अधिक साहित्य को वहां पहुंचा पाएंगे, उन तक पहुंचा पाएंगे अपना। और किसान जिनके पास नहीं है बेटो घाटे में रहेंगे, अरे बेटो सबसे ज्यादा फायदे में है क्योंकि उनके पास तो है नहीं और मिल जाएगा, महावीर का तत्व ज्ञान उनके पास है नहीं और मिल जाएगा। आप लोग नहीं आए थे उसके पहले दिनेश भाई ने एक घोषणा की थी, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं उसे, कि इन्होंने जो लोनावाला में प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट में श्रीमद रायचंद की 7 फुट 7 60 नहीं ना, सेम 7 फुट की खड़ी मूर्ति कह लो स्टैचू कह लो वो लगने वाला है, और वैसी ही जगह उन्होंने स्वामी जी के स्टैचू के लिए भी रखी है, श्रीमद वालों ने उनको परीक्षा की व्यवस्था कर दी है तो लग रही है, और आप लोग व्यवस्था कर देंगे तो स्वामी जी की भी लग जाएगी, मेरी ये भावना है कि उस प्रोजेक्ट में स्वामी जी की भी मूर्ति अवश्य लगे। अरे हम सबको जितने अधिक लोगों को एक साथ करेंगे उतने अधिक लोगों तक अपने तत्व ज्ञान को पहुंचा सकेंगे, हम ये समझते हैं कि गुरुदेव का तत्व ज्ञान दिया हुआ हमारे पास है, तो उसे कैद में मत करो। ये बातें करना ख्याल में आया, इसके पास जाना, उसके पास नहीं जाना, इसके पास नहीं जाना, ये अपने को बाड़े में कैद करना है। कोई एक बात ऐसी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, वाणी से नहीं निकलना चाहिए जो हमें किसी बाड़े में कैद करती हो। कम से कम पूरी जैन समाज के पास तो हम पहुंचे, स्वामी जी के तत्व ज्ञान को, श्रीमद के तत्व ज्ञान को ले जाकर। अरे श्रीमद का और स्वामी जी का थोड़ी है, ये तत्व ज्ञान तो भगवान महावीर का है, सभी का है। उस सब तक पहुंचने के लिए, हम आगामी पीढ़ी तक उस बात को पहुंचाने के लिए, सबसे पहले हमें एक मंच पर आना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा, अज्ञान के विरुद्ध लड़ना होगा, असदाचार के विरुद्ध लड़ना होगा। ये हमारी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए सबका एक दूसरे का सहयोग चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की क्षमता चाहिए। क्यों जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास जब गेहूं की कमी पड़ती है तो अमेरिका से मंगाते कि नहीं मंगाते? 380, और अमेरिका वालों को अकल की कमी पड़ती है तो हमारे यहां से इंजीनियरों को, डॉक्टरों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? कोई परहेज तो नहीं? तो अरे ऐसा हम भी सीखें कि अभी हमारे पास विद्वान हैं तो उनका आप उपयोग कीजिए, आपके पास जो हो उसका उपयोग हमें करने दीजिए। और ऐसे सारी जैन समाज में हम भगवान महावीर के सदाचार को, तत्व ज्ञान को, शाकाहार को पहुंचाएं। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।